ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं और हम सबको उन्हें मास्टर सागर हैं या हम सब ज्ञान की नदियां हैं। तो नदी में और सागर में क्या अंतर होता है? काफी अंतर होता है, क्योंकि नदी वर्तमान समय कलयुग के अंत में प्रदूषित हो गई है। सभी नदियों में प्रदूषण है, लेकिन सागर में कोई प्रदूषण नहीं है। सागर वैसे का वैसा है। तो दुनिया की बातों का प्रभाव नदी पर तो आता है, लेकिन सागर पर नहीं आता, क्योंकि सागर बेहद है और जो नदी है उसकी तो हद है, कहीं से शुरू होती है और कहीं पे खत्म हो जाती है, और सागर तो अनंत है। तो संगम युग पे ज्ञान देके बाबा हमको भी बेहद बना देते हैं। बेहद बनने का फायदा ये है कि हम प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे बताते हैं कि एक बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा था, तो समुद्र की एक लहर आई और बच्चे की चप्पल ले गई। तो बच्चे ने बालू से लिख दिया, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के किनारे कुछ मछुआरे थे जो मछली पकड़ रहे थे, तो उस दिन उन्हें बहुत सारी मछली मिली, बहुत खुश हो गए और उन्होंने समुद्र की महिमा में लिख दिया कि समुद्र हमारा पालनहार है, बालू पे लिख दिया। उसी के किनारे एक नव युवक घूम रहा था, समुद्र की एक लहर आई और वो लहर के साथ अंदर चला गया, डूब गया। तो उसकी माँ ने बालू पे लिख दिया, समुद्र हत्यारा है। और उसी के किनारे पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी, जिसकी कमर में दर्द था, बेचारा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, उसको एक सीप मिली जिसमें मोती था, तो उसने मोती ले लिया और उसने भी बालू के किनारे बालू पे लिख दिया, समुद्र दानी है। इतनी देर में समुद्र की एक लहर आई और सबका लिखा हुआ मिटा करके वापस लौट गई। समुद्र क्या है? लोग चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन समुद्र वही है जो है। किसी के कहने का उस पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये है बेहद। छोटी छोटी बातों में वो अपना श्रृंगार बिगाड़ता नहीं है, छोटी छोटी बातों में अपने चेहरे पे प्रभाव नहीं आने देता। समुद्र का जो तल है वो हमेशा स्वच्छ होता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो वो चांदी की तरह चमकता है, क्योंकि किसी के कहे सुने के प्रभाव से मुक्त है। और नदी को तो देखिए, प्रभावित होती रहती है, लोगों ने कितना प्रभावित कर दिया। सतयुग में इत्र जैसा जल था और अब कलयुग में आते आते गंदा नाला बन गई। तो बाबा कहते हैं, जितना बेहद में रहोगे उतने साफ सुथरे स्वच्छ खुश आनंदित रहोगे। और किसी के कहे सुने के प्रभाव में नहीं आना है। 15 तारीख की जो साकार मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा था कि जो गुणवान बच्चे हैं वो हमेशा हर्षित रहते हैं, वो किसी का अवगुण नहीं देखते, किसी की कंप्लेन भी नहीं करते और अवगुण वालों का संग भी नहीं करते, और किसी की कही सुनी बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये गुणवान बच्चों की बाबा ने निशानी बताई। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारा श्रृंगार करती हैं? बाप दादा ने कैसा हमारा श्रृंगार किया, कैसी पोशाक बनाई, कैसे जेवर पहनाए, उसकी हम चर्चा अभी करेंगे। बाबा की एक मुरली है 7 जनवरी 1980 की, उसमें बाबा ने संगमयुगी बादशाही और सतयुगी बादशाही का कंट्रास्ट किया है। आज बाप दादा वतन में आपस में रू रिहान कर रहे थे, बाप दादा ने सतयुग में क्या क्या होगा वो तो बच्चों को बताया, लेकिन संगम युग भी कोई कम नहीं है। संगम युगी बादशाही भी सतयुगी बादशाही से बहुत महान है। तो उसके बाबा ने उस मुरली में लगभग 16 अंतर बताए। बाबा ने कहा देखो, सतयुग में आप बच्चों को प्रकृति जगाएगी, लेकिन संगम युग में स्वयं प्रकृति पति जगाता है। सुबह सुबह कौन उठाता है? प्रकृति का मालिक आता है, किसी की खटिया हिलाता है, किसी को आवाज लगाता है, किसी को सपने में दिखता है, लेकिन प्रकृति का मालिक एक एक बच्चे को उठाने आता है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में पंछी मीठी मीठी वाणी बोलेंगे और प्रकृति साज बजाएगी, तब आप उठेंगे, लेकिन संगम युग में प्रकृति पति का बड़ा मीठा मीठा साज बजता है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो ये संगम युग कितना महान है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में आपको जमीन बहुत रसीले फल देगी, सतो प्रधान जमीन, सतो प्रधान वृक्ष, उनके ऊपर पके हुए नेचुरल रस वाले स्वाद वाले फल आप खाएंगे, लेकिन संगम युग में वृक्ष पति आपको सर्व संबंधों का रस पिलाता है और सर्व प्राप्तियों का प्रत्यक्ष फल देता है। बाबा ने कहा सतयुग में तो फिर भी गोल्डन एज है, लेकिन संगम युग तो डायमंड एज है। और फिर बाबा ने कंट्रास्ट बताया कि सतयुग में आप दास दासियों के हाथों से पलेंगे, लेकिन यहां तो स्वयं तीनों लोकों का मालिक आपको पालता है। सतयुग में महान आत्माएं देव आत्माएं आपके माता पिता होंगे, लेकिन यहां तो जगत का बीज सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी जानी जाननहार भगवान आपका पिता है। तो कौन सा युग महान हुआ? फिर बाबा ने कहा वहां पे आप रतन जड़ी झूलों में झूलेंगे और यहाँ बाबा की गोदी के झूले में झूलते हो, वहां पे रतन जड़ित खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, पंछियों से खेलेंगे, लेकिन यहाँ तो बाप ही आपके सामने है। बाप कहता है मेरे से खेलो, मुझे बच्चा बना के खेलो या खुद बच्चे बन करके मेरे साथ खेलो, कभी भाई बना के खेलो, कभी सखा बना के खेलो। बाकी खिलौने तो टूट भी जाते हैं और उनको पैसे भी लगते हैं, लेकिन बाप ऐसा खिलौना है जो न कभी टूटेगा और न कभी खरीदना पड़ता है। ऐसा अविनाशी खिलौना संगम पर आप बच्चों को मिला है। फिर बाबा ने कहा वहां गदेलों पे सोएंगे और यहाँ याद के गदेलों पे सोते हैं और वहां निद्रा लोक में जाएंगे, लेकिन यहाँ सूक्ष्म लोक में चले जाते हो। वहां पे दो नेत्री होंगे, लेकिन यहाँ त्रिनेत्री हो। और वहां पे केवल विमान के द्वारा एक लोक की सैर करेंगे, लेकिन यहाँ तीनों लोकों की सैर बुद्धि योग रूपी विमान से करते हो। वहां पे विश्वपति बनेंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिलोकी नाथ हो, त्रिलोकपति हो। और वहां पे रॉयल बुद्धू होंगे, लेकिन यहाँ पे नॉलेजफुल, एसेंसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल। और वहां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आत्माओं से करेंगे, यहाँ भगवान से करते हैं। और वहां बेशक 36 प्रकार के व्यंजन खाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो कौन सा युग श्रेष्ठ हुआ? संगम युग। ऐसे श्रेष्ठ युग में बाप और दादा दोनों मिलके हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, हमें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो आप पल पल पोशाक बदलेंगे, श्रृंगार बदलेंगे, लेकिन उसके संस्कार तो आपको यहाँ से धारण करने पड़ेंगे। तो यहाँ भी पल पल नई पोशाक पहनो, नया श्रृंगार करो, हमेशा सजे सजाए रहो। जैसे लौकिक में माता पिता बच्चे को नहलाते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं, फिर माथे में एक काला टीका भी लगा देते हैं किसी को नजर ना लगे, तो सजे सजाए बच्चे माँ बाप को अच्छे लगते हैं। अगर बच्चा मैला हो तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी बच्चों को इतनी ड्रेस देता हूँ, इतने श्रृंगार देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा इतना सुंदर लगे, इतना सुंदर लगे। तो बाबा ने कौन कौन सी पोशाक दी उनकी चर्चा करेंगे। दो चीजें होती हैं, एक ड्रेस होती है और एक श्रृंगार होता है। ड्रेस माना पहनने का पोशाक, और श्रृंगार का सेट होता है, वो कोई कान में, कोई गले में, कोई हाथ में मैचिंग डाला जाता है। आजकल मैचिंग का जमाना है ना, तो जो सेट बना के देते हैं सोनी लोग, उसमें सब डिजाइन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आप बाबा की दी हुई पोशाक धारण करेंगे, सुंदर पोशाक धारण करेंगे, तो सतयुग में आपने देखा लक्ष्मी नारायण के पीछे वो लंबा लंबा पेशगीर होता है, तो उसको 10 दासियां उठा के चलते। तो बाबा ने कहा यहाँ भी तुम्हारे 10 दासी कौन है जो तुम्हारी सुंदर पोशाक को पीछे पीछे उठा के चलेंगे? तुम्हारे 10 दासियां कौन है? सतयुग में तो 10 दासी मिलेंगे, वो मालूम है। संगम युग में भी तो है ना, संगम युगी 10 दासियां कौन है? 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, ये 10 हमारे सेवक। तो ये 10ों आपके ड्रेस उठा के चलेंगे। तो वो ड्रेस कौन सी है, पोशाक कौन सी है, श्रृंगार कौन सा है? बाबा ने कहा बाप ने आपको जो भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए हैं, उन टाइटल्स की जो स्थितियां हैं अलग अलग, वो आपकी पोशाक। तो 1 घंटे एक टाइटल की स्थिति में टिको, 2 घंटे दूसरे टाइटल की स्थिति में टिको, ये तो आपकी पोशाक हो गई, और इसके साथ श्रृंगार। तो बाबा ने कहा आपको अनेक सेट बाबा ने दिए हैं। एक सेट है आनंद स्वरूप का, एक है शांति का, एक है प्रेम का, एक है खुशी का, एक है शक्ति का। तो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि सुबह उठते ही आनंद स्वरूप का सेट पहन लो। 3 चीजें होती हैं, एक होता है सुविधा, एक होता है सुख और एक होता है आनंद। सुविधा को हम अंग्रेजी में कहते हैं कंफर्ट। प्रकृति से यानी कि विज्ञान के साधनों से हमें जो कुछ मिलता है उसको हम कहते हैं कंफर्ट, सुविधा। जैसे पैदल जा रहे थे, गाड़ी मिल गई, सुविधा हो गई। जमीन में बैठे थे, कुर्सी मिल गई, सुविधा हो गई। अंधेरे में बैठे थे, रोशनी हो गई, सुविधा हो गई। हाथ से लिख रहे थे, कंप्यूटर से जल्दी में लिखा गया, सुविधा हो गई। दीज आर कंफर्ट्स जो हमें प्रकृति से और विज्ञान के साधनों से मिलते हैं। दूसरा होता है सुख। सुख हमें अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छे संबंधों से मिलता है। गुणवान लोग, पवित्र लोग, निस्वार्थ लोग, सहयोगी लोग, मीठा बोलने वाले, यानी के दैवी परिवार से हमें जो मिलता है उसका नाम है सुख। लेकिन जो तीसरी चीज है वो है आनंद। आनंद या तो आत्म अनुभूति से मिलता है या परमात्म अनुभूति से मिलता है। इसके अलावा इसका और कोई सोर्स नहीं। तो इनमें सर्वोच्च है आनंद, क्योंकि आत्मा से केवल आनंद ही मिलेगा, परमात्मा से केवल आनंद ही मिलेगा। तो आनंद स्वरूप का सेट पहनना है ना, श्रृंगार पहनना है ना, तो सबसे पहले मस्तक में विचार आनंदमय, मस्तक की चिंदी हो गई, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे आनंद की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मैं प्रकृति के कण कण में आनंद बिखेर रही हूं, मुझ आत्मा का धर्म ही है आनंद, मुझे हर चीज हर दृश्य से आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद का कुंड मेरे भीतर है, मुझे बाहर से कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं हूं ही आनंदमयी। तो सुबह सुबह हमने मस्तक में चिंदी लगाई, आनंद का चिंतन, मेरा जीवन आनंदमय है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। उसके बाद कान में बालियां पहनी, वो भी आनंद स्वरूप की। आनंद स्वरूप बनाने वाले शब्द सुने, और अगर आनंद स्वरूप बनाने वाले नहीं भी सुने तो उनको मोल्ड कर दिया, आनंद स्वरूप बना लिया, लेकिन जो कान में गया वो आनंदमय था। उसके बाद गले में माला पहनी, तो जो गले से शब्द उच्चारे वो भी आनंदमय थे, बोलते हुए मुझे भी आनंद आया और सुनने वालों को भी आनंद आया। उसके बाद हाथों से जो कर्म किए, उन कर्मों को करते मुझे बहुत आनंद आया, और मेरी उस सेवा से लाभ लेने वालों को भी बहुत आनंद आया। तो हाथों में आनंदमय कर्म, और पैरों से मैं जहां भी चल के गई मैंने आनंद बिखेरा, लोगों को आनंद देने वाले कर्म किए पैरों से चल के। तो ये कितना सुंदर मैचिंग श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक का। ऐसे श्रृंगार से कोई सजा हुआ तो कैसा लगेगा, आनंद ही आनंद, जैसे आनंद कुंड हमारे सामने आ गया। तो बाबा कहते हैं दुनिया में आनंद नहीं है, सबके श्रृंगार बिगड़े पड़े हैं, और आप बच्चे जब ऐसे सजे सजाए रहते हो तो उनको बड़ा आकर्षण होता है। और पोशाक कौन सी है जो भिन्न भिन्न टाइटल रूपी स्थिति है। जैसे हमारा एक टाइटल है, बाबा ने कहा तुम उद्धार मूर्त हो, तो उद्धार मूर्त की स्थिति कौन सी है। श्री राम वनवास में गए सबका उद्धार करने, तो हम सब भी तो वनवाह में है ना, तो जो राम का जीवन है वो हमारा यादगार जीवन है। उन्होंने वनवासियों का उद्धार किया और आज ये सारी दुनिया कांटों का जंगल बनी पड़ी है। हम भी अवतरित हुए हैं श्री राम की तरह से इन वनवासियों का उद्धार करने। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो साधु सन्यासी हैं उनका उद्धार हो जाएगा और दूसरे राक्षस यानी कि राक्षसी वृत्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा। तो मेरा वनवासी जीवन कैसा है? त्याग का जीवन। तो मैंने जो पोशाक पहनी है वो उद्धार मुहूर्त की पोशाक है, जिसमें त्याग है, जिसमें तप है, जिसमें सेवा है, जिसमें नम्रता है, जिसमें निस्वार्थ भाव है, जिसमें देने का भाव है, कल्याण का भाव है। तो ये मेरी उद्धार मुहूर्त की यूनिफॉर्म है। मैं जब भी इस पोशाक को पहनती हूँ तो कितनी आत्माओं को सुकून मिलता है, कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की पोशाक पहनो। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है और मैं मास्टर। तो बाबा क्या करते हैं? जो बाबा का काम वो मेरा काम। भक्त लोग आके कहते हैं प्रभु शक्ति दो, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की पोशाक पहने बैठा हूँ, स्थिति में बैठा हूँ। अपने मस्तक से मैं लाइट की किरणें बिखरा रहा हूँ ताकि कमजोर आत्माओं को बल मिले, मनोबल मिले, शक्ति मिले, 5000 साल से थकी हुई प्रकृति को बल मिले, ग्रहों और नक्षत्रों को बल मिले, मेरी सराउंडिंग में जो कमजोर आत्माएं हैं उनको बल मिले। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की यूनिफॉर्म पहने बैठा हूँ। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी की पोशाक पहनो। फिर बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी की पोशाक पहनो। तो ये अलग अलग पोशाक बाबा ने बच्चों को पहनाई। लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर तो बाबा वाली पोशाक को पहनते हैं और उसके बाद उतार के फेंक देते हैं और फिर वही पुरानी वाली गली सड़ी पोशाक पहन लेते। तो बाप दादा वतन में बैठे बैठे देखते रहते हैं बच्चे ने ड्रेस निकाल दी। कई बार आपने देखा होगा बच्चे भी ऐसे करते हैं ना, सर्दी में आप स्वेटर पहनाओगे बच्चा निकाल देगा, सिर पे टोपा पहनाओगे फेंक देगा, पांव में जुराब जूता पहनाओगे निकाल देगा। तो माँ बाप को चिंता होती है, फिर पहनाते हैं फिर निकालता है, कई बार तो ये खेल चलता ही रहता है सारा दिन। तो ऐसे ही बाबा भी बच्चों को इतना सुंदर पोशाक देते हैं और बच्चे निकाल के पुरानी वाली पहन लेते हैं। बाबा मुरली में एक कहानी सुनाते हैं ना, आपको याद होगी, खेरुत वाली कहानी। एक खेरुत थी, खेती में काम करने वाले परिवार की कन्या थी पर बहुत सुंदर थी। तो राजा जब उधर से गुजरा तो वो खेती में गीत गा रही थी, आवाज बड़ी सुरीली थी, घूम रही थी। तो राजा को उसका चेहरा बड़ा पसंद आ गया। तो राजा उसके माता पिता के पास गए, बोला मेरे को ये कन्या चाहिए, मैं इसे महल में ले जाऊंगा, महारानी बनाऊंगा। माता पिता ने कहा नहीं, ये आपके योग्य नहीं है, एक खेरुत है, खेतों में घूमने वाली अनपढ़ गंवार लड़की, न खाने का सलीका न पहनने का सलीका, ये आपके योग्य नहीं, आप मत लेके जाओ, पछताओगे। राजा ने कहा नहीं नहीं मैं ढाल लूंगा। माता पिता के ना ना करने के बावजूद राजा उसे महल में ले आया। जब लेके जाने लगा तो माता पिता ने एक छोटा सा बक्सा दिया। राजा ने कहा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मेरे महल में सब कुछ है। माता पिता ने कहा नहीं, पियर की कोई निशानी तो लड़की के पास रहनी चाहिए ना, इसलिए हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं दे रहे, बस 2-3 ड्रेस दे रही हैं, बाकी तो आप जो पहनाना हो पहनाना। तो ठीक है, महल के कोने में वो बक्सा रख दिया गया और वो सजी सजाई महारानी महल में रहने लगी। एक बार पड़ोसी राजा ने राजा को न्योता दिया कि 2-4 दिन मेरे यहाँ आके रह। तो अपने कुछ विश्वस्त लोगों को, महल के मुख्य मुख्य लोगों को, और अपने मंत्री और कुछ और लोगों को लेके राजा तीन चार दिन के लिए वहां गया। महल खाली खाली हो गया, ये अकेली थी महल में। अब अकेली थी तो इसको पुराने दिन याद आए, उसने अपनी वही संदूकड़ी खोली, उसमें से वही वाली ड्रेस निकाली जिसको पहन के खेतों में गाती थी, उलझे हुए बाल और वही पुरानी खाली खाली ड्रेस, और उसी को पहन के महल में इधर से उधर उधर से इधर घूम रही है और अपने वही खेतों वाले गीत गा रही है। बहुत दिनों के बाद अंदर दबा हुआ जो था वो निकला तो बहुत मस्ती से गाया और इतनी देर में राजा आ गया। तो जैसे ही राजा ने उसका वो रूप देखा तो हैरान हो गया, बोला ये क्या, मैं तो महारानी को छोड़ के गया था और ये खेरुत कहां से आ गई। तो राजा को समझ में आया कि बेशक महारानी बन गई लेकिन संस्कार नहीं बदले, तो ले गया वापस और माँ बाप को सौंप आया, बोला आपने ठीक बोला था, ये अपनी बेटी पकड़ो और ये अपनी संदूकड़ी पकड़ो, ये महारानी वाले रूप में ढल नहीं पाई, इसको यहाँ खेतों में ही गाने दो स्वतंत्रता पूर्वक, महल इसको बंधन लगता है। तो ये कहानी बाबा मुरली में सुनाते हैं कि बाबा बच्चों को महारानी बनाने वाली ड्रेस पहनाते और बच्चे फिर वही पुरानी खेरुत वाली ड्रेस पहन लेते। तो बाबा ने देखा कि बच्चों ने चार प्रकार की ड्रेस पहनी जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। तो पहली जो ड्रेस थी वो कौन सी ड्रेस थी, वो बहुत ही मैली थी और उसमें बदबू आ रही थी। कौन सी बदबू आ रही थी, देह के संबंधों की लगाव की बदबू आ रही थी। जब बाबा साकार में थे तो कोई कोई बच्चे से मिलते नहीं थे, ब्राह्मणियां कहती थी बाबा ये बच्चा आपसे मिलना चाहता है, कितनी देर से बैठा है। बाबा कहते थे नहीं उसमें बदबू आ रही है, बाबा नहीं मिलेगा। तो कहते थे नहीं बाबा वो तो नहाया धोया साफ कपड़े पहने हुए। तो बाबा कहता था नहीं, उसको ना अपने परिवार की घर की स्मृतियां आ रही। तो देह के लगाव, देह के संबंधों के लगाव, इनको बाबा बदबू बोलता था। आपने देखा होगा जो मक्खी होती है ना हमारे चारों ओर जो उड़ती है, वो घूमती है और उसे मीठी चीज से बहुत प्रेम होता है। तो एक होता है चीज को खाना और एक होता है चीज के लगाव में आना, दोनों में अंतर होता है। तो मक्खी खाती नहीं है लेकिन उसके लगाव में डूब जाती है, दोनों पंख डुबो लेती है, खाने की तो होश ही नहीं रहती और पंख छुड़ाने में इतनी मेहनत करती है कि उसमें डूबी डूबी मर जाती है। इसको कहते हैं लगाव। संसार सागर है, सागर के कभी बीच में नहीं जाया जाता, सागर को किनारे बैठ के सागर की लहरों का आनंद लिया जाता है, सागर में पांव डुबोए जाते हैं लेकिन खुद नहीं डूबा जाता। तो संसार सागर है, इसमें किनारे बैठिए, किनारे बैठ के इसके लहरों को देखिए, साक्षी होके इसका आनंद लीजिए, लेकिन अगर इसमें अटैच हो गए, इसमें डूब गए, तो जो हमारा आध्यात्मिक स्वच्छता है, आध्यात्मिक पवित्रता है, जो आध्यात्मिक बल है, वो नष्ट हो जाता है। तो देह और देह के संबंधों का लगाव, इसमें बदबू आती है, जीत उसी की होती है जो इन लगावों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए क्राइस्ट ने अपने जो प्रवचन दिए उसमें वो कहता था कि मेरी कोई माँ बाप कोई नहीं है, सब मर गए, और जो उसके चेले थे उनको भी कहता था कि जिसके माँ बाप भाई बहन है वो कोई मेरे पास ना आए, मेरे पास वही आए जिसका इनमें से कोई भी नहीं। जो अपने माँ बाप भाई बहन से प्रेम करता है वो उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, और जो उससे प्रेम करता है उनका इनसे प्रेम निकल जाएगा। प्रेम निकलने का मतलब है निभाना तो सबसे है, लेकिन दिल केवल एक में रहे, नहीं तो दिल बट जाती है। थोड़ा सा एक संबंध में, एक संबंध में, एक संबंध में। इस पे एक राजा की बड़ी प्रेरणादायी कहानी सुनाते हैं कि एक राजा को कोई वारिस नहीं था, तो एक सन्यासी आया, उसने कहा कि तुमको कोई वारिस नहीं है और तुमको चिंता तो है कि वारिस होना चाहिए। राजा बहुत अच्छा था, उसने कहा मुझे वारिस नहीं चाहिए, मेरी प्रजा ही मेरी वारिस है। लेकिन सन्यासी ने उसको बहुत बरगलाया, सिखाया, पढ़ाया और बोला एक वारिस होना तो अनिवार्य है। तो राजा ने कहा अच्छा फिर कहाँ से आएगा, तो बोला मैं विधि बताता हूँ, तुम प्रजा में से किसी एक लड़के की बलि दे दो देवी को तो तुमको वारिस आ जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कोई भी नहीं आया। पांचवें दिन राजधानी से थोड़ा बाहर खेतों में एक गरीब परिवार था जिसके तीन लड़के थे, तो वो माता पिता आपस में चर्चा करने लगे। माता कहती है कि आज पांचवें दिन भी ढिंढोरा पीटा गया, लगता है कोई बच्चा आया नहीं है राजा के पास। हम इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों की पालना नहीं कर पाते, तो अगर एक बच्चा हम दे दें तो इनाम तो बहुत बड़ा आधा राज्य मिलेगा। तो पिता कहता है कौन सा बच्चा देंगे, बड़ा बच्चा तो मैं नहीं देने दूंगा, वो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे सारे काम कर देता है, मुझे बहुत आराम देता है। और माँ कहती है छोटा बच्चा मैं नहीं देने दूंगी, क्योंकि वो सारा दिन मेरे साथ घूमता है, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। तो बच्चा बीच वाला, अब वो सुन रहा था, उठ के आ गया। माँ ने कहा अरे बेटा सोजा सोजा, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, पर उसको कहा नींद आनी थी। सारी रात ऐसे ही गुजर गई, सुबह हुई, उसको नया कपड़ा पहनाया, नहलाया धुलाया, एक हाथ माँ ने पकड़ा एक बाप ने पकड़ा और राजा के दरबार में पहुंच गए। महाराज ये हमारा पुत्र है, ले लो। राजा ने कहा ठीक है, बलि अभी 15 दिन बाद होगी और उसके बाद आपका हिसाब कर दूंगा। सन्यासी ने कहा था बच्चे को 15 दिन अपने पास रखना, खूब खिलाना पिलाना घुमाना, क्योंकि उनको तो ये था कि बच्चे को शायद कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बच्चे ने तो सब बातें सुन ली थी। अब राजा घुमाने ले जाता है तो बच्चे का मुंह उदास, खिलाने ले जाता है हजारों प्रकार की चीजें, लेकिन बच्चा खाता नहीं है, नए कपड़े पहनाता है बच्चा पहनता नहीं है, उदास उदास। तो राजा ने सोचा ये 15 दिन उदास रहेगा हमको भी उदास कर देगा, इसको खुश करना चाहिए। राजा ने पूछा तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कहता है मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। बोला नहीं कुछ तो है बताओ। तो बोला महाराज आप बहुत पूछ रहे हो ना, तो मैं बताता हूँ। मुझे 6 दिए, 6 बाती, थोड़ा सा तेल और एकांत चाहिए, ऐसी जगह हो जहां मुझे कोई ना देखे। तो राजा ने ये सब चीजें तो दे दी, लेकिन मन में क्यूरियोसिटी आई कि ये करेगा क्या, इनका देखूं तो सही। तो छिपके बैठ गया जहां से वो बच्चे की एक्टिविटी दिख रही थी झरोखे में। तो बच्चे ने एक दिया जलाया, उसको बहुत प्यार से देखा और प्यार से देखने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए, नफरत आई और उसको उसने तोड़ डाला। दिया बुझ गया, तेल नीचे बिखर गया और मिट्टी के दिए के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर दूसरा दिया जलाया, उसको भी ऐसे ही प्यार से देखा, फिर नफरत आई, उसको भी तोड़ दिया, तेल बिखर गया। तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, 5 के साथ उसने ऐसे ही किया। और फिर छठा दिया जलाया तो उसको देख देख के मुस्कुराता रहा, उसके बाद गीत गुनगुनाने लगा, उसके बाद उसके आगे हाथ जोड़े, अष्टांग प्रणाम किया, फिर खड़ा हुआ, उसके चारों ओर घूमा, ताली बजाई, उसके बाद उसके साथ बैठ के बातें करने लगा। और चेहरे पे एकदम रौनक आ गई। तो राजा बड़ा उत्सुक हुआ और एकदम दौड़ के गया, अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है? तो बच्चा कहता, महाराज मैंने कहा था ना देखना मत, आपने अपना वायदा क्यों तोड़ा, आपने क्यों देखा, आपने तो कहा था मैं नहीं देखूंगा। राजा ने कहा, बेटा मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैंने देख ही लिया तो अब मीनिंग भी बता दे। तो बच्चे ने कहा, जब आपने देख ही लिया तो अब छिपाने से क्या फायदा? तो बच्चा कहता है, देखो महाराज, इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के लिए माँ सबसे बड़ी चीज होती है, भगवान का दूसरा रूप होती है। मेरी भी एक माँ थी, है नहीं थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, हम गरीब थे लेकिन फिर भी प्यार से पालती थी। लेकिन जब उसे पता पड़ा कि अगर मैं राजा के यहाँ आ जाऊं और मेरी बलि हो जाए तो आधा राज्य मिल जाएगा, तो मेरी माँ इतनी स्वार्थी हो गई कि उसने मेरे पिता को सहमत कर लिया और मुझे बलि के लिए भेज दिया। उस माँ की याद का दिया मेरे हृदय में जल रहा था। आज मैंने उसके नाम का दिया जलाया, अपनी कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि ऐसी हत्यारी माँ का मैं क्या करूं? माएं तो ऐसी होती हैं, अपने प्राण दे के भी बच्चे को बचाती, और ये माँ तो अपने सुख के लिए मेरे प्राण ले रही, तो मुझे माँ नहीं चाहिए। मैंने दिया जलाया और बुझा दिया, अब मेरी कोई माँ नहीं है, मैं बिना माँ का ही सही। और अगर किसी की माँ ना हो तो उसका बाप होता है, बाप भी माँ जैसा प्यार दे लेता है। मेरा भी एक बाप था, गरीब था पर कभी कंधे चढ़ाता था, कभी गोदी लेता था, बहुत प्यार करता था, अपने हिस्से का भी मुझे खिला देता था। लेकिन उसको भी धन का लालच आ गया और माँ के साथ मेरा हाथ पकड़ के मुझे मरने छोड़ गया। उसकी याद का दिया मेरे दिल में जल रहा था, आज मैंने उस दिए को बुझा डाला, अब मेरा कोई बाप नहीं है, मुझे बाप भी नहीं चाहिए। और किसी के माँ बाप ना हो तो बड़ा भाई भी माँ बाप के बराबर होता है। मेरा भी एक बड़ा भाई था, मैं उसके लिए पानी गर्म करता था, खेत में रोटी ले जाता था, कभी कभी थक जाता था तो उसके पांव दबाता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। मैंने सोचा था जब मेरे माँ बाप मुझे महल की तरफ ले जाएंगे तो वो मेरे माँ बाप को रोकेगा कि मेरे भाई को मत ले जाओ, हमको राज्य नहीं चाहिए। पर मैंने देखा दरवाजे की झिरी के पीछे छिपके खड़ा देख रहा था कि ये जल्दी जाए, तो ऐसे स्वार्थी भाई का मैं क्या करूं? उसके नाम का दिया भी मेरे हृदय में जल रहा था, मैंने वो भी आज तोड़ डाला। और किसी का बड़ा भाई ना हो तो छोटा भाई, अब भरत भी तो राम का छोटा भाई था ना, मैं भी अपने छोटे भाई को भरत जैसा ही समझता था। और मैंने सोचा था मेरे माँ बाप मुझे जब लेके जाएंगे तो वो दहाड़ मार के रोएगा, लेकिन बेशक छोटा है, धन का लालच उसको भी आ गया, वो भी छिपके देख रहा था कि अब तो राज्य मिलने वाला है। तो उसके लिए मेरे हृदय में प्यार का दिया जलता था, आज मैंने उस वाले दिए को भी तोड़ डाला। और राजा, किसी को माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, भाई भी ना हो, छोटा बड़ा, तो जो राजा होता है ना वो उसका माई बाप होता है। और मैंने तो सुना था बहुत अच्छे राजा हो, दयालु हो, गरीबों का कर्ज माफ कर देते हो, प्रजा की बहुत सेवा करते हो, आपको कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी दिल में आपका भी प्यार भरा दिया जल रहा था, लेकिन अब मुझे पता पड़ा आप कितने स्वार्थी हो। आप अपने बेटे के लिए किसी दूसरे के बेटे की गर्दन पे छुरी चला सकते हो, तो ऐसे राजा का मैं क्या करूं? तो जो आपके प्यार का दिया मेरे दिल में जल रहा था ना, आज मैंने उसको भी तोड़ डाला, मैं बिना राजा का ही सही, मेरा कोई राजा नहीं। और महाराज किसी को माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, राजा भी नहीं, तो फिर केवल एक भगवान बचता है। अब छठा दिया भगवान की याद का दिया है, उसके प्यार का दिया है। अब मैंने सारे दिए बुझा करके एक दिया जलाया है और मैं इस दिए को देख के 15 दिन हर्षित रहूंगा, इसके आगे नाचूंगा, गाऊंगा, इसको प्रणाम करूंगा, इसकी फेरी पहनूंगा, इसके गुण गाऊंगा। इसके पास जाना है तो क्यों ना अभी से इससे मित्रता कर लूं, यही मुझे हंसाएगा, यही मुझे खिलाएगा, मेरा सब कुछ केवल ये एक है महाराज, मैं यही रहूंगा, इसी के प्यार में डूबा रहूंगा, इसी के गुण गाऊंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि बस मुझे इसके सामने रहने दो और मेरे मन को आनंदित रहने दो, ये 15 दिन मेरे आनंद के दिन होंगे। राजा उसकी बातें भी सुन रहा है और आंखों से आंसू भी बह रही हैं। फिर राजा कहता है, बेटा किसने कहा मैं तेरी गर्दन पे छुरी चलवाऊंगा, मैं तो तेरे को ही बेटा बनाऊंगा। और तभी राजा ने एक ढिंढोरा पिटवाया कि मुझे मेरा वारिस मिल गया है और कल उसका राज तिलक होगा, इसलिए सब राजधानी के लोग राज दरबार में हाजिर हो जाए। तो सारे दिए बुझा के एक दिया जलाया तो क्या क्या मिला, क्या क्या मिला? जीवन मिला, इज्जत मिली, राजाई मिली और ईश्वर का प्रेम हृदय में जग गया। सारे दिए बुझ गए तो एक ही तो रह गया। तो बाबा ने कहा, पहली जो ड्रेस थी उसमें दे दे के संबंधों की बदबू आ रही थी, लेकिन जिसने सारे दिए बुझा दिए और केवल एक दिया जगमगा रहा है, उसकी ड्रेस से तो खुशबू आएगी, तो बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? खुशबूदार बच्चे चाहिए जो एक की याद की यूनिफॉर्म पहने। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जो एक की याद की लगन में मगन रहे, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। और बाबा ने कहा, दूसरी मैंने ड्रेस देखी जिनमें से चमड़े की ड्रेस थी और चमड़ी की बदबू आ रही थी, तो बाबा ने कहा ये ड्रेस थी क्रिमिनल आई की, क्रिमिनल आई। बाबा कहते हैं, आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म हुआ है, पिछला जन्म तो कैंसल हो गया, नया जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, मुख कमल से। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा की भ्रकुटी सतगुरु का द्वार है, तो जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो क्या क्या दिखता है? मुख कमल दिखते हैं तो जन्म स्थान है, यानी कि हमारी माँ है। मस्तक देखते हैं तो सतगुरु दिखता है, यानी कि मुक्ति का द्वार है। तो उसके हम सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं और भाई बहन हैं। बाबा मुरली में कहता है, लौकिक दुनिया में भी अगर भाई बहन कोई किसी को कुदृष्टि से देखे तो बाप क्या करता है, घर से निकाल देता है, बाप बहुत कड़ी सजा देता है। तो ये तो सारा जगत ही ब्रह्मा की रचना है, तो ब्रह्मा के बच्चे हम सब कौन हो गए? आपस में भाई बहन साकार में, निराकार में तो दृष्टि की बात ही नहीं है, वो तो आत्मा आत्मा है। तो बाबा ने कहा कि बाबा देखता है कि भाई बहन की दृष्टि से भी बाज नहीं आते, तो बाबा ने फरमान किया, अब आत्मा देखो, ना कोई भाई ना कोई बहन, सब आत्माएं। तो ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर कोई किसी को कुदृष्टि से देखता है तो अगले जन्म में लूला लंगड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा शत्रु है काम, और विकारी दृष्टि भी काम से रंगी हुई होती है, तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। अज्ञानी व्यक्ति को 1 गुणा और ज्ञानी व्यक्ति को 100 गुणा। तो ये बार बार अंदर में पक्का करना है कि मैं ब्रह्मा मुख कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, पवित्र ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हूँ, भक्ति में एक जनेऊ पहनते हैं जिसमें तीन धागे होते हैं और उसको गांठ लगा करके वो धागा एक बन जाता है। तो जनेऊ अर्थात बाप, टीचर, सतगुरु और गांठ लगा दी तो एक में ही हमारे तीनों, तो हम जनेऊधारी। जनेऊधारी ब्राह्मणों को बहुत पवित्र माना जाता है, ये गोपवीत बोलते हैं इसको। तो हम सब ने त्रिमूर्ति स्मृति की जनेऊ पहनी है, एक की याद की गांठ लगा रखी है, तो हमारी दृष्टि शुरुआत मन से होती है, फिर दृष्टि होती है। तो सबसे पहले मन को एकदम शुद्ध बनाना है, एक बच्चे की तरह से इस मन को पढ़ाना है। जैसे हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटा स्कूल जाएगा, रास्ते में गाड़ी आएगी तो ध्यान से चलना, टक्कर ना हो, जल्दबाजी नहीं करना, घबराना नहीं। बच्चे को कितनी बातें सिखाते हैं, स्कूल में अपनी चीज खो मत देना, बस्ते से चीज बाहर निकाली फिर बस्ते में वापस डाल लेना, समझाते हैं ना। तो इस मन को भी बैठ के पढ़ाना पड़े, अपने मन को, दूसरे को नहीं, कि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा जो सारे जगत का रचयिता है, सारे धर्म पिता भी उसके बच्चे हैं, जो आदि देव है, जो जाके श्री कृष्ण बनता है, जो सारे विश्व का मालिक बनता है, उसने तुमको अडोप्ट किया। इतने महान पिता के तुम पुत्र हो, कितने थोड़े लोगों ने उसको साकार में देखा, उसके तो दर्शन भी दुर्लभ, 5000 साल में बहुत कम लोगों को उसे देखने को मिला। तो ऐसे महान पिता के तुम पुत्र हो, उसने अपने पवित्र मुख से तुमको जन्म दिया है, तो तुम कितने पवित्र हो। दुनिया में मंत्री बहुत हैं, आईएएस ऑफिसर बहुत हैं, लेकिन ब्रह्मा के मुख कमल से जन्म लेने वाले पवित्र ब्राह्मण कितने, कोटो में कोऊ और कोऊ में को। तो मैं उन कोऊ में कोऊ हूँ और मेरी इस पवित्रता का बल और फल कितना भारी है। इस पवित्रता के बल से संपूर्ण सृष्टि बदलती है और उसका फल कितना भारी है, संपूर्ण सृष्टि की बागडोर मेरे हाथ में आती है। अरे बच्चे, इस अपवित्रता के कारण तो राजाओं ने राजा ही गंवाई, इतिहास उठा करके देखो, इसने भारत के सोने हीरे के भरे हुए मटके खाली कर दिए। और अब भी अगर किसी के प्रति विकारी दृष्टि जाती है तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो देहों को देखता है, मुर्दों को देखता है, तो उसको अगले जन्म में सतयुग में मुर्दा घाट की सेवा मिलेगी। शरीर तो मुर्दा ही है ना, तो मुर्दा घाट की सेवा कौन करेगा, सतयुग में भी तो कोई मुर्दा घाट में होगा ना। तो बार बार अपने मन को समझाना है कि तुम ब्रह्मा के संतान हो, ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, तुम्हारी कितनी महिमा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुम्हारे नाम, रूप, गुण, कर्तव्य की महिमा अंतिम जन्म तक भी लोग कर रही। उसके बाद तीसरी ड्रेस बाबा ने बताई, उसके ऊपर बड़े गंदे दाग लगे थे। तो ये दाग कौन से थे, बाबा ने कहा दूसरों के अवगुण देखना और उनके दाग अपने पे लगा लेना। तो उनकी ड्रेस दागों से भरी हुई थी, इसका अवगुण, उसका अवगुण, अवगुण देख देख के ड्रेस को बड़ा गंदा कर रखा था। तो बाबा को ये ड्रेस पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं सबके गुण देखो, गुण चोर बनो। श्री कृष्ण को भक्ति में कहते हैं माखन चोर, वास्तव में उसने गुण चोर किए, गुणों की चोरी की, और इसलिए चोरी कर करके इतना महान बन गया कि सतयुग में सारे विश्व का मालिक बन गया। तो हमको भी तो चोरी करना सीखना है ना। गुण उठाओ एक दो से, हरेक में कोई ना कोई गुण है। भगवान का हर बच्चा गुणवान है, भगवान का कोई बच्चा निर्गुणी हो ही नहीं सकता। और उसमें भी जो हमारे नजदीक रहते हैं उनके गुण जरूर देखो, दूर वाले के तो दिख जाते हैं, लेकिन जो हमेशा साथ रहते हैं, सेंटर में साथ रहते हैं, लोग के घर में साथ रहते हैं या यहाँ आके कमरे में इकट्ठे रहते हैं, उनके गुण देखने बहुत जरूरी। गुण देखना माना जैसे मक्खी फूलों में से इत्र इकट्ठा कर लेती है, शहद इकट्ठा कर लेती है, तो ऐसे इत्र इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना। तो ये तीसरी ड्रेस थी। और बाबा ने कहा चौथी ड्रेस थी उसमें से खून टपक रहा था, खून के दाग लगे हुए थे। तो ये ड्रेस वाले बच्चे भी बाबा को पसंद नहीं आए। ये कौन सी ड्रेस थी? बार बार विकर्म कर लेना, बार बार विकर्म कर लेना। गीता में कहा है आत्मघाती महापापी, अर्थात अपनी आत्मा को बार बार दुखी करना। क्योंकि जब जब विकर्म करेंगे तो भारी होंगे, चिंता होगी, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, क्यों क्या मन में आएगा। तो ये विकर्म कर करके अपने मन को कमजोर करना, मन को दुखी करना, मन को अशांत करना, भारी करना। तो बाबा ने कहा खून के धागों वाली ड्रेस थी। संगम युग, जैसे बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, तो संगम युग में चिंता क्यों हो, फिक्र क्यों हो? संगम युग तो बादशाही जीवन, बाप की गोद में बैठे निश्चिंतता का जीवन। लेकिन जब विकर्म कर लेते हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है। अरे सारे विश्व को सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे अगर खुद दुखी होंगे तो सुख कैसे दे पाएंगे? खुद के अंदर से अशांति के प्रकंपन निकल रहे हैं तो औरों को शांति कैसे देंगे? इसलिए एक पल के लिए भी मन में दुख की लहर ना आए। सुखदाता के बच्चे हम सभी सदा सुख स्वरूप बन करके रहें, सुखों से भरी पोशाक पहने, हमारे अंग अंग से सुख के प्रकंपन निकले। हमें देख के लोग कहें इन जैसा सुखी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये चार प्रकार की पोशाक हमको क्या करनी है, पहननी है? नहीं, पहननी है। और जो बाबा ने पोशाक दी भिन्न भिन्न टाइटल्स की, वो पहन के रखनी। ओम शांति।